आज है 29 मार्च दिन बृहस्पतिवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। सीबीएसई पर्चा लीक कांड में पुलिस ने दो मामले दर्ज किए, 25 लोगों से पूछताछ। सरकार ने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी।
मेरी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और उन पर कैसे न अन्याय हो इसके लिए क्या किया जा सकता है इसके हम विचार विमर्श कर रहे हैं।
लेकिन 10वीं और 12वीं के छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ।
करप्शन किसकी है? सीबीएसई की। फॉल्ट किसका है? सीबीएसई का। सीबीएसई छुट्टी में चली गई आराम से और बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अम्बेडकर के नाम में राम जी लगाने का फैसला किया। बीजेपी के दलित सांसद उदित राज ने विरोध किया।
अरे भाई, मरने के बाद किसी के आदमी के बारे में नाम बदलना क्या मतलब?
ये सब होगा कार्यक्रम में आगे, पर विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार, नवीन नेगी से। समाज सेवी अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में चल रहा अपना अनशन आज समाप्त कर लिया है। अन्ना हजारे लोकपाल बिल की मांग, लोकायुक्त की नियुक्ति और किसानों से जुड़े मुद्दों पर 23 मार्च से अनशन पर बैठे थे। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अन्ना से मुलाकात की, जिसके बाद अन्ना हजारे ने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला किया। सीबीएसई द्वारा 10वीं के गणित और 12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा कराए जाने की घोषणा के बाद आज देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पेपर लीक के इस मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि उन्होंने अभी तक कुल 25 लोगों से पूछताछ की है। इनमें 5 कॉलेज छात्र और 5 प्राइवेट ट्यूटर भी शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वे इस मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें जल्दी ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही पुनः परीक्षाओं की तारीख भी सीबीएसई जल्दी ही जारी करेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जावड़ेकर और सीबीएसई के चेयरमैन के इस्तीफे की मांग की है। रूस ने एक बार फिर ब्रिटेन पर आरोप लगाए हैं कि वह पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल की हत्या के प्रयास की जांच में उचित सहयोग नहीं कर रहा है। रूस का कहना है कि ब्रिटेन उसे अपने राजनयिक अधिकारियों से जुड़ी जानकारियां साझा नहीं कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने कहा कि ब्रिटेन इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रहा है। मारिया जखारोव ने कहा,
как можно раздобыть хоть какую-то информацию?
जब ब्रिटिश सरकार के अधिकारी हमारे साथ जानकारियां ही साझा नहीं करेंगे तो हम कैसे जांच पूरी कर पाएंगे? विशेष तौर पर उनके प्रधानमंत्री, विदेश सचिव और रक्षा सचिव ने रूसी प्रतिनिधियों से संपर्क करने से इनकार कर दिया है। वे संसद के भीतर सिर्फ राजनीतिक नारेबाजी कर रहे हैं। ये थे रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। केन्या की हाईकोर्ट ने राज्य के वकीलों को आदेश दिया है कि वे उन तीनों उच्च अधिकारियों को कोर्ट के सामने पेश करें जिन्हें सजा सुनाई जानी है। दरअसल केन्या के गृह मंत्री, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल और अप्रवासन विभाग के प्रमुख पर आरोप थे कि उन्होंने विपक्ष के नेता मिगुना मिगुना को रिहा करने के आदेशों का पालन नहीं किया था। मिगुना मिगुना का कहना था कि उन्हें देशद्रोह के झूठे मामले में फंसाया गया है। उसके बाद प्रशासन ने उन्हें लगातार प्रताड़ित किया। मिगुना ने यह भी कहा था कि नैरोबी एयरपोर्ट पर उनके साथ मारपीट की गई और ड्रग्स देकर जबरदस्ती दुबई जाने वाले प्लेन में बैठाया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों का कहना है कि तीनों अधिकारियों में से कोई भी उनके संपर्क में नहीं है। मिस्र की सरकारी मीडिया ने घोषणा की है कि अब्दुल फतेह अल सीसी ने राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर ली है। खबर में बताया गया है कि अभी तक हुई मतगणना में अल सीसी ने 90% से अधिक वोट मिले जीते हैं। फतेह अल सीसी के सामने मौसा मुस्तफा मौसा के रूप में महज एक ही चुनौती मौजूद थी। नतीजे सामने आने के साथ ही कायरा की सड़कों पर अब्दुल फतेह अल सीसी के समर्थक रैलियां निकालने लगे हैं और राष्ट्रपति के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इसी रैली में शामिल एक समर्थक को सुनिए। यह चुनाव काफ़ी बेहतर तरीके से हुए। हम सभी जानते थे कि वोट देना हमारा अधिकार है। हम आने वाले वक्त के लिए अपने बेहतर भविष्य का चुनाव कर रहे थे। जो काम पिछले 4 सालों में हुआ है वह आगे भी लगातार होते रहना चाहिए। ये थे मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी के एक समर्थक के शब्द। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। दसवीं और बारहवीं के छात्र छात्राएं परीक्षाओं के बाद तनाव मुक्त होकर छुट्टी मना रहे थे कि गणित और अर्थशास्त्र के इम्तिहान रद्द करने की खबर ने उनको बेचैन कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पर्चे लीक होने के बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है, दो मामले दर्ज किए हैं और 25 लोगों से पूछताछ की है। बुधवार को CBSE ने दसवीं की गणित और बारहवीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा करवाने का ऐलान किया। इसके बाद देश भर के छात्र गुस्से में हैं। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि सरकार कह रही है कि गुनहगारों को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इस मामले ने विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली से सरोज सिंह की रिपोर्ट।
परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद हुए हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दो अलग अलग जांच किए जाने का ऐलान किया और कहा कि मंत्रालय ने अपने स्तर पर जांच के आदेश दिए हैं और दिल्ली पुलिस की अलग जांच चल रही है।
ये जो बनाया है पुलिस ने क्राइम ब्रांच और हमने भी SIT भी बनाया है और हमने भी एक इंटरनल जांच कर रहे हैं और दोनों के जो परिणाम आएंगे वो आपको बताएंगे। लेकिन मेरी पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है और उन पर कल से न अन्याय हो इसके लिए क्या किया जा सकता है इसके हम विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके बारे में परीक्षा कब होगी, क्या होगी, इसका CBSE निर्णय करेगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी कहा कि परीक्षा के आयोजन के मामले में अब तक CBSE पर कोई दाग नहीं लगा है, लेकिन इस एक घटना के बाद वक्त आ गया है जब दुनिया के दूसरे देशों से सबक लें, जहां बड़े पैमाने पर लीक प्रूफ परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में बदलाव और सिस्टम में सुधार की तरफ इशारा भी किया।
जो आवश्यक बदलाव है वो करेंगे, ये कमिटमेंट निर्धार हमने मन में किया है। मुझे लगता है आज के दिन इसकी सेंसेशनलिज्म को न बढ़ाते हुए मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सिस्टम भी सुधरेंगे, गुनहगारों को भी पकड़ेंगे और उनको सजा दिलाएंगे।
दसवीं के गणित की परीक्षा 28 मार्च को हुई थी, जबकि बारहवीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा 26 मार्च को हुई थी। कुल 16 लाख छात्र छात्राओं को अब दोबारा से ये परीक्षा देनी होगी। CBSE ने बुधवार को नोटिस जारी कर दोनों विषयों की फिर से परीक्षा लेने की घोषणा की थी। इस निर्णय पर देश के अलग अलग शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन भी किया और CBSE पर उनके भविष्य के साथ खेलने का आरोप लगाया। पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर ट्विटर के जरिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा,
कितने लीक, डेटा लीक, आधार लीक, SSC एग्जाम लीक, इलेक्शन डेट लीक, CBSE पेपर लीक, हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है।
ये था राहुल गांधी का ट्वीट। इसी तरह दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्विटर पर लिखा,
डेटा लीक, SSC पेपर लीक, इलेक्शन डेट लीक, CBSE पेपर लीक, ये केंद्र सरकार है या लीकेड सरकार, इनसे कोई संस्थान नहीं संभल रहा, हर संस्थान को तबाह करके मानोगे।
ऑनलाइन डेटा चोरी मामले में केंद्र सरकार बचाव की मुद्रा में है और परीक्षा पर्चा लीक होने के बाद उसे छात्रों के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। सरोज सिंह, BBC दिल्ली।
CBSE का पर्चा लीक करने वालों को सरकार पकड़ने का भरोसा दिला रही है, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर में दसवीं और बारहवीं के छात्रों ने फिर भी विरोध प्रदर्शन करके अपने गुस्से का इजहार किया।
ओजस्वी क्लास 10th एंड ऑब्वियसली ये डिसीजन सही नहीं है। Because सबसे पहले तो CBSE has to be held accountable for their actions. अगर वही ये नहीं पता करवा सकते कि actual culprit कौन है जिसने CBSE के ऑफिस से पेपर लीक करवाया है, then government का क्या पॉइंट है? अगर government ही लोगों की नीड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और अकाउंटेबल नहीं होगी, then there is no point of having a legitimate government. एंड दूसरा, अगर हम 12th की बात करें तो 12th के बच्चों को अपने एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करना है और अगर अब वो प्रिपेयर CBSE का रीटेस्ट करें या एंट्रेंस करें, एंड एंट्रेंसेस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरीबॉडी नोज की DAO की कट ऑफ 98-97% तक जाती है।
आपसे जानना चाहती हूँ, आपका नाम?
भाविका यादव। रीटेस्ट ले रहे हैं मैथ्स का पूरा सिलेबस। एक तो पहली बात, कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं, जैसे इंग्लिश बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश में, साइंस में, SSC में। मैथ्स है कि बहुत सारे बच्चे जो कंफर्टेबल नहीं होते मैथ्स के साथ, उनको पसंद भी नहीं है मैथ्स, एंड बहुत सारे बच्चे आफ्टर द एग्जाम वॉज ओवर पीपल वर सो हैप्पी कि एग्जाम्स खत्म हो गए एट लास्ट. अब उन पर वापस पूरा मेंटल स्ट्रेस कि उनको एग्जाम्स करने, ऑब्वियसली ट्यूशन टीचर्स और ज़्यादा मेहनत करवाएंगे एंड पेरेंट्स और प्रेशर डालेंगे. और ये टेंथ का बोर्ड है, कोई नॉर्मल स्कूल एग्जाम नहीं है.
आपसे जानना चाहती हूँ, अपना नाम बता दो. एक तो आप यहाँ आए हो, पेरेंट्स को पता है, स्कूल टीचर को मिलेगा?
नहीं नहीं, मेरा पेपर अच्छा गया था और मेरे को मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, पर जब से हम टेंथ में आए हैं हम सिर्फ पेपर दे रहे हैं, इसलिए मैथ्स करना इतना टास्क लगता है क्योंकि जब एक चीज़ समझ आती है फिर दूसरी चीज़ पर जाओ इतनी जल्दी, तो फर्स्ट वाली चीज़ हम डेफिनेटली भूल जाते हैं. हम रट्टा मार रहे हैं मैथ्स भी. अब क्रिएटिविटी इंडिविजुअलिटी का कोई वैल्यू नहीं रहता. जब एक खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, फिर हम दूसरे के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि एक खत्म होने का रिलैक्सेशन नहीं मिलता.
उस चक्कर में एक्चुअल एजुकेशन, एक्चुअल लर्निंग होती नहीं बच्चों की.
और जो पेपर लिख करवाते हैं वो पूरे साल ना पढ़ के बस आखिरी के दो तीन दिन पढ़ लेता है और उसका सिलेबस हो जाता है.
आपसे भी एक लास्ट सवाल, आपका नाम बता दीजिए.
प्रिया.
कितना मुश्किल है एक माँ बाप होने के नाते बच्चों को दोबारा एक एग्जाम दिलवाना.
आप देखो इनकी शक्लें कैसी हो रही है बेचारे बच्चों की. और बच्चों सड़क पर आ गए, 12th 10th स्टैंडर्ड्स के बच्चे सड़क पर आ गए हैं अपने राइट्स के लिए, जिसमें करप्शन किसकी है, CBSE की. फॉल्ट किसका है, CBSE का. CBSE छुट्टी में चली गई आराम से और बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं.
मैम अगर CBSE एक पेपर नहीं संभाल सकती तो हमारा फ्यूचर कैसे संभाल सकती है? जो इतनी बड़ी बोर्ड डायरेक्टरी जो हमारे सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है वो कैसे संभाल सकती है? जब मैम अकाउंट्स का पेपर मिनी सिसोदिया ने ऑनलाइन डाल चुके थे कि हाँ ये पेपर की मैं जाँच करूँगा, तो मैम उसका वो क्यों नहीं रद्द हुआ मैम? और इकोनॉमिक्स का पेपर क्यों रद्द हो गया? और मैम तभी बोलना चाहिए था ना.
CBSE के पास इतना स्टाफ है, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, इतनी सिक्योरिटी, उसके बाद ही पेपर लीक हो रहे हैं. और एक नहीं, हर स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट के पेपर लीक हो रहे हैं.
दिल्ली के जंतर मंतर में CBSE के छात्रों का प्रदर्शन. ये BBC हिंदी सेवा है.
BBC हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर.
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम में रामजी जोड़ने का फैसला किया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है. राज्य के राज्यपाल राम नाईक ने इस सरकारी आदेश पर मुहर लगा दी है. इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड और चिट्ठी पत्री में बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा जाएगा. अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालूजी सकपाल था और महाराष्ट्र में नाम के साथ पिता का नाम लगाने की परंपरा रही है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है. पर उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी. सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट.
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने कुछ समय पहले यह आपत्ति जताई थी कि बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर का नाम यूपी में न तो सही लिखा जाता है और न ही इसका सही उच्चारण होता है. उन्होंने भीमराव एक साथ लिखने और आम्बेडकर की जगह आम्बेडकर कहने की बात कही थी. सरकार ने उनकी सलाह पर नाम सही करने का फरमान सरकारी विभागों को जारी किया और उसमें बाबा साहब का वो नाम लिखने को कहा गया है जो नाम भारतीय संविधान की मूल प्रति में लिखा है. यूपी सरकार के नए शासनादेश के अनुसार अब उनका नाम भीमराव रामजी आम्बेडकर होगा. शासनादेश में ऐसा करने के पीछे संविधान की 8वीं अनुसूची का हवाला दिया गया है. संविधान के अनुसार बाबा साहब का नाम करने की पहल पर चुटकी लेते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को पूरा संविधान पढ़ने की नसीहत दे डाली.
संविधान की कुछ लाइनों को पढ़ लें, प्रीएम्बल को पढ़ लेंगे तो शायद जो सदन में नाराजगी दिखाई देती है समाजवाद को लेकर के वो दिखाई नहीं देगी. तो कम से कम जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर नाम जुड़ रहा है, नाम जोड़ा सरकार ने, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कम से कम एक बार संविधान की वो सब लाइनें पढ़ लेनी चाहिए और जिस समय वो संविधान की कुछ पंक्तियां पढ़ लेंगे तो शायद सदन में उन्हें नाराजगी नहीं होगी.
राज्यपाल राम नाईक खुद मराठी हैं और उन्होंने ये कहते हुए नाम सही करने की सलाह दी थी कि यहाँ अनजाने में लोग गलत उच्चारण करते हैं. लेकिन भीमराव और आम्बेडकर के बीच में रामजी जोड़ने को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है. वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की संपादक सुनीता आयरन कहती हैं कि निश्चित तौर पर इसके पीछे राजनीतिक सोच है.
ये तो डेफिनेटली इसके पीछे एक पॉलिटिकल मूव है. एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर भी किया था कि अंबेडकर जी की फोटोग्राफ हर गवर्नमेंट ऑफिस में लगेगी, थानों में, सब जगह लगेगी. अब वो उसके साथ ही उन्होंने उनको सही नाम से बुलाने का बात कर ली. तो एक मैसेज जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो उसको दूसरी तरह से देखेगा. पढ़े लिखे तो समझ लेंगे कि हाँ जी भीमराव रामजी अम्बेडकर पूरा नाम था. तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो जब देखेंगे अम्बेडकर और रामजी साथ साथ में है
लेकिन मुख्य रूप से दलित समर्थक पार्टी का दावा करने वाली बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा तो इस बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने ये कहा,
अब हमें जानकारी नहीं है, ये तो जिसने किया वही कमेंट दे सकता है, हम बिना जाने सुने कैसे हम प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है, अब हमारे नेता आदरणीय वाणी जी प्रतिक्रिया दे पाएंगे।
यूपी सरकार के प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार की ओर से जारी शासनादेश की प्रति उच्च न्यायालय के निबंधक को भी भेजी गई है। जानकारों की माने तो हर सरकारी दफ्तर में 1 अप्रैल से आम्बेडकर की तस्वीर लगाने और उनका नाम सही करने का काम 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के जन्मदिन तक पूरा करने की कोशिश होगी। लेकिन हम सवाल ये है कि इसके पीछे यदि कोई राजनीतिक मकसद छिपा है तो वो आगे क्या गुल खिलाएगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और इस रिपोर्ट के लिखे जाने के बाद पता चला है कि BSP ने यानी बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब का नाम सही करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। BSP की नेता मायावती का कहना है कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक लिखित बयान में उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या नरेंद्र मोदी का पूरा नाम सरकारी विज्ञापनों में लिखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के दलित सांसदों में भी इस फैसले के कारण काफी बेचैनी दिख रही है। पार्टी के सांसद उदित राज ने खुलकर इस पर एतराज जताया है। मैंने कुछ ही देर पहले उनसे पूछा कि आप अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं।
देखिए ऐसा है कि मैं तो नहीं समझ सकता हूँ कि कोई वजह है। हम लोग तो भीमराव अम्बेडकर ही जानते थे। जो व्यक्ति अब दुनिया में रहा ही नहीं उसके नाम में परिवर्तन करना, बिना वजह विवाद को पैदा कर देना, मुझे तो नहीं लगता कि ये उचित है और अनावश्यक है। या मेरा निजी राय है
ना, वो तो ठीक है, लेकिन आपको
निजी राय है, पार्टी का राय मत समझिएगा। और चूंकि मैं जब दलितों की जो खबरें आ रही हैं वो पार्टी अपना बताए कि क्या उनका स्टैंड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई वजह ही नहीं।
उन्होंने तो ये कहा है और ये एक तर्क जो है उनका कि महाराष्ट्र में परंपरा है कि अपने नाम के साथ पिता का नाम लगाते हैं।
अरे जरूरी नहीं है परंपरा भाई, अब शरद पवार जी क्यों नहीं लिखते भाई, हाँ फडणवीस क्यों नहीं लिखते भाई।
तो लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर
कंपल्सरी तो नहीं है,
लेकिन राम नाइक है।
क्या फायदा है, क्या मिलेगा, कोई फायदा है क्या?
लेकिन नुकसान भी क्या है, मान लीजिए उनकी तरफ से अगर तर्क दें।
अरे भाई क्या मतलब होता है, अरे नुकसान क्या, पूरा कितना बड़ा रिकॉर्ड है, कितना बड़ा, जितना लिटरेचर, जितना लिखा पढ़ा, जितना इंटरनेट पर किताबों में है उतना शायद ही कितना किसी के ऊपर हो। अभी कर्नाटक में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 70% मेजोरिटी के लोगों ने PhD डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर किया।
लेकिन
नाम ही बदलते हैं कि क्या मतलब क्या है।
लेकिन उदित राज जी ये भी तो देखे कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्ल्ड विजन है, विश्व उनकी दृष्टि है, उसमें भगवान राम की बहुत महत्वपूर्ण जगह है।
अरे भाई यहाँ राम को क्यों घसीट रहे हो,
राम जी नाम ही तो लगाया है उसमें।
नहीं राम यहाँ, अरे भाई मरने के बाद किसी के आदमी के बारे में नाम बदलना क्या मतलब होता
है। लेकिन राम जी नाम लगा है ना, तो आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है।
अरे भाई मैं पार्टी के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा निजी राय है, क्या वो, क्या फायदा क्या है,
ये तो वो ही बताएंगे।
कुछ नहीं, ऐसा नहीं, खुद ही भीमराव अम्बेडकर लिखते थे, हर सभी जब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जान रहे तो क्या मतलब।
तो अगर कोई फायदा नहीं तो क्या वो जानबूझ के कर रहे हैं क्या?
नहीं फायदा वही कह रहा हूँ, अनावश्यक है और क्या कहा जाए।
तो अब क्या करेंगे आप इस पे?
नहीं वो हमें जो हमारा निजी राय था मैंने कर दिया, बस
राय जाहिर करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे आप?
हाँ मैं राय अपना व्यक्त कर चुका हूँ।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदित राज बार बार सवाल कर रहे थे कि नाम बदलने का मतलब क्या है, इससे फायदा क्या है। बहरहाल ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर, मैं हूँ राजेश जोशी। आइए चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की वो छोटी सी लड़की जिस पर सिर्फ इसलिए प्राण घातक हमला कर दिया गया था क्योंकि वो स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, अब 5.5 साल बाद मलाला यूसुफजई अपने मुल्क लौटी है। मैंने कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद में BBC उर्दू की फरहत जावेद से संपर्क किया और पूछा कि मुल्क लौटने पर मलाला का किस तरह का स्वागत किया गया।
मलाला यूसुफजई जब आज इस्लामाबाद पहुंची तो उसके बाद आज सुबह ही उनके लिए एक इवेंट जो है वो उसका इनाकाद किया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में. प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद उन्हें रिसीव किया और उसके बाद मलाला के लिए जो एक इवेंट था वहाँ मलाला ने ख़िताब किया. और मलाला ने पहले तो बहुत इमोशनल एक स्पीच की और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो वापस पाकिस्तान आई हैं और ये उनका ख्वाब था कि वो एक महफूज पाकिस्तान में दोबारा कदम रखें और यहाँ अपने घर भी जाएँ. अगरचे उनके घर के घर को जाने के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ लेकिन एक बहुत इमोशनल स्पीच उन्होंने दी. और उसके साथ साथ जो उनका एक कॉज है एजुकेशन का, ख़ास तौर पे लड़कियों की एजुकेशन का, उस पर भी उन्होंने खुल के बात की और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के बारे में भी उन्होंने बात की. तो एक बहुत ही पावरफुल किस्म की स्पीच आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में की थी.
कुछ लोग मलाला यूसुफजई से इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं.
बिल्कुल, जब मलाला यूसुफजई पे ये अटैक हुआ और वो इंग्लैंड गईं तो उसके बाद ही जहाँ एक बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान में शुरू हुई थी जो उनका उनके हक में थी, उनकी फेवर करती थी, वहीं पर एक बहुत बड़ा कम्युनिटी का हिस्सा ऐसा भी था जो कि उनको डाउटफुल समझता है और उनको कुछ लोग उन्हें वेस्टर्न एजेंडा पे काम करने का कहते हैं, कुछ लोग उन्हें वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने का कहते हैं. तो एक पूरी कम्युनिटी ऐसी भी मौजूद है यहाँ पाकिस्तान में जो कि मलाला के खिलाफ नज़र आती है. और इनमें एक आयरनी ये भी है कि इनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पहले मलाला पर इसलिए तनकीद करते थे कि वो पाकिस्तान आ नहीं रही और अब जब वो आई हैं तो वो इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि ये क्यों आई हैं पाकिस्तान.
मलाला यूसुफजई की हिफाजत को लेकर कई लोग चिंता जताते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के.
उनकी सिक्योरिटी आज हमें नजर भी आई. मैं होटल गई, वहां पे भी बहुत टाइट सिक्योरिटी थी और उनकी सिक्योरिटी ही एक बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से उनके जो 4 दिन का यहाँ पे स्टे होगा पाकिस्तान में, वो आइंदा वो क्या क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, किन लोगों से मुलाकातें करेंगी या किन फंक्शंस में वो हिस्सा लेंगी, इस बारे में फिलहाल कोई मीडिया को जानकारी इस बारे में नहीं दी जा रही.
मलाला यूसुफजई की वतन वापसी जानकारी दे रही थी इस्लामाबाद से बीबीसी उर्दू की फरहत जावेद. और अब समय है आपकी चिट्ठियों का.
आपकी राय. नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ स्टूडियो में हैं
सूर्यांशी पांडे.
जी सूर्यांशी, बहुत सारे पोस्ट कार्ड दिख रहे हैं आपके हाथ में, पोस्ट कार्ड से ही शुरू करते हैं.
तो राजेश जी, सबसे पहले ये पीले खत में पहला खत है सुंदर बाई साहू, उर्मिला साहू और शिव कुमारी बबली साहू, इन्होंने पूरे परिवार का नाम लिखा है.
क्या बात है. और हमारी महिला श्रोताओं का खास तौर पर स्वागत है. कम चिट्ठियां लिखती हैं, जब उनकी चिट्ठी आती है तो अच्छा लगता है.
और इन्होंने भेजा है ग्राम कोयदा भाटा छत्तीसगढ़
जी.
तो ये लिखते हैं कि ये इमरान कुरैशी की उस रिपोर्ट की तारीफ कर रहे हैं जिसके अंदर आदिवासी लड़की का दर्द जो है वो दर्शाया गया था और उन्हें काफ़ी दुखद खबर तो उन्हें लगी थी लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी तरह से उसे प्रस्तुत किया गया था.
ये एक ज़रूरी रिपोर्ट थी और हमें लगा कि इसका प्रसारण होना चाहिए. जाहिर है कि बहुत ही दुखद रिपोर्ट थी लेकिन जिस तरह से भारत के आदिवासी इलाकों की खबरें, दूर दराज की खबरें, गाँव की खबरें जो मीडिया है उस पर उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाई जाती, तो हमें जब भी ऐसी कोई खबर मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे लोगों तक पहुंचा सकें.
दूसरा पीला खत है अशोक कुमार ठाकुर जी का जो दरभंगा बिहार से लिखते हैं और ये लिख रहे हैं कि रेडियो बीबीसी से प्रसारित कार्यक्रम दुनिया जहां में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बारे में जो जानकारी दी गई वह बेहद ज्ञानवर्धक लगी उन्हें. और इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि वो शक्तिशाली बनकर विश्व में एक अलग पहचान बनाई और मेरे ख्याल से जो उन्होंने सुना है उसी को इन्होंने अपने खत में लिखा है.
बहुत ये हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का दुनिया जहान का कि इसके जरिए दुनिया की जो बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़े लोग हैं, बड़ी घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे सकें जो हिंदी में आसानी से आपको दूसरी जगहों पर नहीं मिलती हैं. तो ये हमारी कोशिश होती है. आपको अच्छा लगा, आपका शुक्रिया.
लेकिन राजेश जी, जब तक आप ये इनका उत्तर दे रहे थे मैं यहाँ पे बड़ी प्रयास कर रही थी कि मैं इनका खत पढ़ पाऊँ. इनका नाम मेरे को के दुबे, मेरे ख्याल से इनका नाम है, अगर आप पढ़ें. मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये, रीवा से.
जी, हरी स्याही से इन्होंने लिखा है. आर के दुबे हैं,
आर के दुबे,
रीवा मध्य प्रदेश से. और इन्होंने लिखा है जय हिंद. और इन्होंने चीन का जो दबदबा बढ़ रहा है उसके बारे में चिंता प्रकट की और उन्होंने कहा है कि चीन को जिस तरह से अपना दावा जता रहा है हर जगह और अपनी ताकत के बल पर वो कहता है कि वो हिस्सा आपका है, अगर देश में और दुनिया में सुकून कायम करना है तो चीन की इस समस्या का हल बातचीत के जरिए निकाला जाना
चाहिए. और राजेश जी, मैं तारीफ करूंगी कि आपने पूरा खत एक सांस में पढ़ डाला.
जी,
ईमेल्स लेते हैं और ईमेल्स की अगर बात करें तो पहला ईमेल जो है जेएनयू से आया है, मुकेश पनवर ने लिखा है, ये हॉस्टल से लिखा है इन्होंने, और इन्होंने ये कहा है कि मुझे प्रोग्राम बेहद लजीज लगते हैं, जितने भी बीबीसी के प्रोग्राम होते हैं, रिपोर्ट होती हैं, और दिव्या आर्य की साहस की उन्होंने तारीफ की है, और साथ ही साथ उन्होंने मेरी भी तारीफ की है और कहा है कि और कहा है कि मैंने अपने आप को निखारा है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए।
मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि इनका नाम पवार हो और इन्होंने शायद अंग्रेजी में लिखा है या हिंदी में पनवर लिखा है अपना नाम,
पनवर अंग्रेजी में लिखा है, मुकेश पनवर
अंग्रेजी में लिखा है, तो हो सकता है कि ये पवार हो या पनवर हो, जो भी आपका नाम हो, अगर हमने उसका गलत उच्चारण किया तो हम माफी चाहते हैं। कार्यक्रम हमारे लजीज लगते हैं, ये एक बहुत ही मजेदार एक्सप्रेशन है, क्योंकि लजीज आमतौर पर खाने पीने की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम में रस लेते हैं, हाँ, स्वाद लेते हैं, तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। बहुत आपकी चिट्ठी के लिए शुक्रिया।
और ये दूसरा मेल भेजा है, इनका नाम है राकेश राणा, और ये लिखते हैं, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, और ये लिख रहे हैं, इन्होंने काफ़ी पत्रकारों को याद किया है, अचला शर्मा जी को याद किया, ममता जी को याद किया है, शिवकांत जी को याद किया है, और कुर्बान अली को याद किया है, और कहा है कि बहुत बड़े पत्रकार जो है बीबीसी में आए और उन्होंने प्रस्तुति की, उनको मैं याद करना चाहूँगा, और रेहान फजल सर की उन्होंने और राजेश जोशी सर की तारीफ तो की ही है, साथ में उन्होंने सुशीला जी, रूपा झा, इन सब के जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है, जिस तरह से वो अपनी प्रस्तुति करती थी, उनकी तारीफ की है। और
इससे साफ लगता है कि हमारे बहुत पुराने और बहुत नियमित श्रोता हैं और लोगों को बहुत प्यार से याद करते हैं, ऐसे श्रोताओं के साथ हम भी वो प्यार जो वो भेजते हैं हमें, हम महसूस करते हैं, और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और बरसों का हमारा साथ है और इसी तरह हमें चिट्ठियां लिखते रहें। मेरे ख्याल से अब वक्त हो चला है आपकी राय को यहीं समाप्त करने का। तो अगर आप हमें डाक से पत्र भेजना चाहें तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो हमें आप चिट्ठी जरूर लिखते रहिए। फिलहाल वक्त है खेल समाचारों का।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने गेंद से छेड़छाड़ की घटना के बाद अपनी गलतियों को लेकर आज क्रिकेट प्रशंसकों से माफी मांगी। मीडिया से बातचीत के दौरान स्मिथ भावुक नजर आए। इसके साथ ही स्मिथ ने कहा कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा जिंदगी भर रहेगा।
I made a serious error of judgment and I now understand the consequences.
मैंने गलती की है, अब मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। ये मेरी कप्तानी की नाकामी है। अपनी गलती को सुधारने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। अगर इस गलती से कुछ अच्छा हो सकता है, अगर ये लोगों के लिए एक सीख बन सकती है, तो मैं इस बदलाव की वजह बनना चाहूँगा। मुझे अपनी गलती का पछतावा ज़िंदगी भर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में मैं लोगों की नज़रों में वापस सम्मान पा सकूँगा।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और पूर्व उपकप्तान डेविड वार्नर पर एक साल का प्रतिबंध लगाया है। वहीं बीसीसीआई ने इन दोनों खिलाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें इस सत्र के आईपीएल टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कोच डेरन लेमन ने भी इस पूरे प्रकरण के बाद कोच पद त्यागने का फैसला ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वांडरर्स में होने वाला चौथा टेस्ट मैच लेमन का आखिरी मुकाबला होगा। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टेम्परिंग मामले में लेमन को क्लीन चिट दी थी। और अब चलते हैं महिला क्रिकेट की तरफ, जहां आखिरकार भारत को जीत का स्वाद चखने को मिला। हाल ही में महिला T20 ट्राई सीरीज के सभी मुकाबले हारने वाली भारतीय टीम ने आज इंग्लैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 18.5 ओवर में 107 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से अनुजा पाटिल सबसे ज्यादा 3 विकेट लेने में कामयाब रहीं, वहीं राधा यादव, दीप्ति शर्मा और पूनम यादव ने 2-2 विकेट झटके। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर द्वारा लिया गया एक कैच आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने इंग्लैंड के 17वें ओवर में अनुजा पाटिल की दूसरी गेंद पर डेनियल हेजलमिड का कैच डाइव लगाते हुए एक हाथ से पकड़ा। T20 प्रारूप में भारतीय टीम की इंग्लैंड पर ये तीसरी जीत है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचारों के बाद नवीन नेगी से सुनिए मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। समाजसेवी अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में चल रहा अपना अनशन समाप्त कर लिया है। वे 23 मार्च से अनशन पर बैठे थे। CBSE द्वारा 10वीं के गणित और 12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा कराए जाने की घोषणा के बाद आज देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। रूस ने एक बार फिर ब्रिटेन पर आरोप लगाए हैं कि वह पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल की हत्या के प्रयास की जांच में उचित सहयोग नहीं कर रहा है। बीबीसी समाचार।
ये थे अब तक के मुख्य समाचार और इसी के साथ मैं राजेश जोशी आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरूटिया ने और फेसबुक के जरिए अब तक पहुँचाने में मदद की ब्रजेश मिश्र ने। कल सुबह तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।